کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ، کما کرو میرے رام رگھناتھ اب تک کے سارے اپرادھ۔
آج کے پرسنگ اور کل کے پرسنگ پر دو شبد کہنے سے پہلے کچھ ایک نویدن ہے۔ دیویو سجنوں، آپ سب کی سیوا میں سرپرتھم یہ جو آج کل بھکتی پرکاش سے کتھا پرکاش جی کا پرسنگ چل رہا ہے، یہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے گیتا جی کا پاٹھ، اس میں جلد بازی نہ کیجیے گا۔ یوں کہوں گا کہ سوامی جی مہاراج کا ہردے ہے کتھا پرکاش، اس کا پاٹھ یہاں ہو، گھر میں ہو، لیکن ایسے ہو جیسے گیتا جی کا پاٹھ کیا جاتا ہے، اسی شردھا سے، اسی پریم سے، اسی بھاونا سے کہ سوامی جی مہاراج اپنا ہردے ہم سب کے پرتی اڈھیل رہے ہیں، دشتانتوں کے مادھیم سے جو بات سمجھ آتی ہے میں ویسے بڑے بڑے گرنتھ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ سوامی جی مہاراج نے کتنی سندر شیلی اپنائی ہے، جو چیز میں سمجھانا چاہتے ہیں ان کو دشتانتوں کی ادھارنوں کی پشٹی دیا ہے، بل دیا ہے۔ سداچار سمجھانا چاہتے ہیں، آلوچنا سمجھانا چاہتے ہیں تو دشتانت دیے ہیں، جیونت ادھارنے دیے ہیں، کوئی من گھڑنت ادھارنے نہیں ہیں۔ کوئی کنکوکٹڈ جیسے اسٹوری رائٹرز اسٹوریز لکھتے ہیں ایسی اسٹوریز نہیں ہیں، یہ سوامی جی مہاراج پر آپ بیتی یا آنکھ دیکھی ہوئی کہانیاں ہیں، دشتانت ہیں، اتیو ان میں سوامی جی مہاراج کا بل ہے، سنتوں مہاتماؤں کا بل ہے، اتیو اسے جلد بازی سے نہ پڑا کیجیے گا۔ ایک بات دوسرے آپ سب سے نویدن ہے وشیشتیا یہاں کے پربندکوں سے کہ کتھا پرکاش کو چھوڑا نہ کریں، جیسے بھکتی پرکاش کا پاٹھ پہلا پاٹھ جو سب مل کے گاتے ہیں، میں ضرور محسوس کرتا ہوں گانا سننا بہت اچھا لگتا ہے، سرتال میں پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن سیکھنے کی درشٹی سے، اپنے جیون میں اتارنے کی درشٹی سے کتھا پرکاش چھوٹا نہیں ہے۔ اتیو یہ ایک نیمت انگ بن جانا چاہیے کہ اس کا پاٹھ یہاں پر ہو، جس وقت شبنم جی یا شاردا جی پاٹھ کریں اس وقت کوشش کریں कि वह धीरे धीरे पढ़े और आप अपने ग्रंथ खोल के तो एक एक लाइन इस प्रकार से पढ़े कि आज अपने जीवन में कौन सी पंक्ति हमने उतारनी है। तो दीक्षिका देवियों सज्जनों, जीवन कुछ ही दिनों में दिव्य बन जाएगा। एक प्रार्थना। दूसरा निवेदन, जो साधक मुझे मिलने के लिए सत्संग के बाद रुकते हैं, स्वागत है उनका, रुकें। एक तो जल्दी पहुंचा करें उस द्वार पर, मेरा समय बचेगा। दूसरे, जैसे अर्ज की थी कि अनावश्यक बात के लिए मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, तनिक मेरी जगह पर भी आप खड़े होके देखिए तो आपको महसूस हो। यहाँ आप बैठे हुए हैं, आपने श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया है, स्वामी जी महाराज को मत्था टेका है, पुष्य प्रेम जी महाराज को मत्था टेका है, परमेश्वर श्री अधिष्ठान जी को, नाम भगवान जी को आपने मत्था टेका है, अमृतवाणी का पाठ किया है, अभी भक्ति प्रकाश का पाठ भी हुआ है, फिर सुना भी है। आप इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको पता है ना, अग्नि से उष्णता प्राप्त करती है तो अग्नि के पास ही जाने की आवश्यकता है, वे आप आ गए। हमारा विश्वास इतना अधूरा है, इतना कच्चा है देवियों सज्जनों, यहां मांगने की जरूरत नहीं, क्यों, अग्नि के पास आके तो कोई उससे उष्णता मांगता नहीं। तनिक सोच के देखो, कॉमन सेंस क्या कहती है, कैसी बातें स्पष्ट करती है। मनाली या श्रीनगर आप जाते हैं तो वहां पर जाके आपको ठंडक मांगनी नहीं पड़ती, वह मिलती है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर आके आपने जो भजन पाठ किया है, प्रणाम किया है परमात्मा के श्री चरणों में, साधक जनों शास्त्र कहता है एक दफा का प्रणाम, भावपूर्वक प्रणाम, परमात्मा को ऋणी बना देता है। सच्चे दिल से किया हुआ प्रणाम, कई सारे अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है एक भावपूर्ण प्रणाम से। ये तभी ना भारती, कब, जब ऐसा विश्वास होगा तो, नहीं तो फिर क्या होगा, मेरे जैसे व्यक्ति के आगे जाके हाथ फैलाने पड़ेंगे, आशीर्वाद दीजिएगा। उस वक्त जिस वक्त आप मेरे पास आके आशीर्वाद मांगते हैं, मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी, कितना दुख महसूस होता होगा, इन्होंने कुछ सीखा नहीं, मैं जहां से आशीर्वाद मांगता हूं वहां से होके आए हैं ये, उसके बावजूद भी इनको मेरे से आशीर्वाद मांगने की आवश्यकता पड़ती है तो मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूं, बहुत दुखी महसूस करता हूं अंदर से। ऊपर से तो हंसता रहता हूं लेकिन अंदर से मुझे बड़ा दुख महसूस होता है। कैसे सिखाया जाए ऐसे लोगों को, कैसे इनके अंदर विश्वास के टीके लगाए जाए ताकि इनके अंदर विश्वास जो है वह सच्चा विश्वास, जीवंत विश्वास जो है वह इनके अंदर उतरे। उस दिन आपसे अर्ज की थी, जो साधक जन्मदिन की बधाई लेना चाहते हैं आते हैं मेरे पास, आके खड़े ना हो जाया करें सिर्फ, मैं किस किस का जन्मदिन याद रखूं। तनिक मेरे पांव में खड़े होके देखिएगा आप लोग, आप अपेक्षा रखते हैं कि हमारा जन्मदिन इसे याद होना चाहिए, हमारे पुत्र का जन्मदिन इसे याद होना चाहिए, उसका नाम भी याद होना चाहिए, मेरे पति का नाम भी याद होना चाहिए। मैं किसी को कह नहीं सकता कि देवी माफ करना मैं भूल गया, आपका क्या नाम है या आपके पति का क्या नाम है, वह इस चीज को बहुत बुरा मानेंगे। बेहतर यही है कि आप आओ तो अपना परिचय दो, आज हमारा जन्मदिन है, या हम इस परिवार से आए हैं या हम वहां से आए हैं, तो मुझे पता लगे। एक मिनट के बाद दूसरा, या एक मिनट आधा मिनट होता है उसके बाद दूसरा, किसी का रोना सुनता हूं तो उसके बाद उनके साथ मुझे हंसना पड़ता है, क्यों, वह कोई खुशखबरी मुझे सुनाने के लिए आया है। तनिक मेरे पांव में खड़े होके देखिएगा कितनी कितनी कठिन काम मुझे स्वामी जी महाराज ने सौंपा हुआ है। आज वो युवक दिखाई नहीं दे रहा यहां पर, हो सकता है बाहर बैठा हुआ हो। लगभग पिछले 6 महीने से मैं उसे देख रहा हूं, उस युवक को। एक पत्र आया था यहां आने से पहले कि मेरी ट्रांसफर दिल्ली हो गई है, तब से आज तक इंतजार कर रहा हूं। वे आए, मैं उससे पूछूं, बेटा निवास का क्या प्रबंध किया है, कहाँ रहते हो, भोजन इत्यादि का क्या प्रबंध है, कोई यहां तकलीफ तो नहीं? अभी 1-1.5 महीना हुआ है तो उसके घर से पत्र आया, बड़े भाई का विवाह है, होना तो यूं चाहिए था कि वह यहां आता मेरे पास, मुझे मिलता तो मैं विवाह की बात पूछता, लेकिन वो मुझे घर से पत्र आया है, माता पिता की ओर से पत्र आया है कि नृपेंद्र का विवाह है, नृपेंद्र नायक जो ढोलक बजाता है, भजन गाता है, यह बुआ से, उसके छोटे भाई की बात कर रहा हूँ। यदि आज वो यहाँ बैठा हुआ हो तो मेहरबानी करके मुझे 1 मिनट के लिए मिलता जाए, कितना फख्र महसूस करता हूँ ऐसे साधकों पर। देवी और सज्जनों, ये 2 बच्चे हैं झाबुआ से, आज तो मैं युवक कह रहा हूँ पर मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये बच्चे थे। झाबुआ में एक ही साधना सत्संग लगा है, तब की बात है, छोटे बच्चे थे ये, दीक्षा के पहले 1-2 बैचेस होंगे, सो कभी ध्यान भी नहीं किया कौन दीक्षा ले रहे हैं, जो बैठ के सबको दीक्षा जो है वह मिल जाती थी, और फिर कोई 10-15 हूँ तो मैं चुनूं भी कि आप अभी छोटे हो बाहर जाओ, जहाँ हजारों लोग दीक्षा के लिए बैठे हों वहाँ ये काम मेरे लिए करना बहुत कठिन हो जाता है, लोग दीक्षा ले जाते हैं। दीक्षा आपने ले ली तो आप साधना सत्संग के अधिकारी हो गए। मुझे कठिनाई उस वक्त आती है, उस वक्त मुझे पता लगता है। एक ही साधना सत्संग झाबुआ में हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, स्कूल में था, अनेक वर्ष पहले की बात है, जब ये बच्चे थे, अब तो युवक हैं, एक की शादी हो गई है, दूसरे की होने वाली होगी। इनका नाम साधना सत्संग के लिए नहीं रखा गया, छोटे बच्चे हैं समझ नहीं पाएंगे। उस वक्त भी ये करताल बहुत अच्छी बजाते थे, गाने का तब पता नहीं था, गाते हैं। माता पिता दोनों सम्मिलित, 4 ही सदस्य परिवार के, माता पिता 2 पुत्र। जब इनको इनकार हो गया, आनंद आए मेरे पास पूछने के लिए, नायक के 2 पुत्र भी आए हुए हैं और वह साधना सत्संग में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें दीक्षा ली हुई है, बाहर खड़े हैं। मैंने कहा छोटे बच्चे हैं, इनको अनुमति नहीं दी जा सकती। तो आनंद ने कहा कि मैं मिलना चाहते हैं, तो मैं बाहर चला गया, बाहर जाके बच्चों को देखा तो आंखों में आंसू थे। कहने लगे हम 4 ही सदस्य हैं, माता पिता, माँ खाना बनाती है तो हम खाते हैं, माँ भी यहाँ है, पिता भी यहाँ है, हमारे खाने का प्रबंध कर दो तो हम वापस चले जाते हैं, नहीं तो हमें यहीं सम्मिलित होने की इजाज़त दी जाए। ये बच्चा वही है जिसकी बात अब से कर रहा हूँ। इजाजत अनुमति दी गई साधना सत्संग अटेंड करने के लिए। बिल्कुल आगे ही मेरे पास 3 दिन के सत्संग में आगे ही बैठते रहे, बहुत सुंदर जो कुछ भी बजाते थे बहुत सुंदर सुरताल से बजाते थे। ऐसे साधक भी हैं साधकजनों, ऐसे साधकों को मैं चरण न चूमूं तो क्या करूं। चर्चा साधक शुरू चल रही थी सब। हाँ, समय तो हो गया, कल भी साधक शुरू रविवार है, इस चर्चा को जारी रखा जा सकता है, आज शुरू कर लेते हैं। समय तो हो गया है पर आज शनिवार का दिन है, 2-3 मिनट के लिए चर्चा करके तो समाप्त करते हैं, कल इस चर्चा को जारी रखेंगे। सदाचार की चर्चा चल रही थी, आज स्वामी जी महाराज ने आलोचना की चर्चा की है। एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिसमें दोनों का मिश्रण है। सदाचार के लिए याद है आज स्वामी जी महाराज ने लिखा है, सदाचार यदि स्वर्ग है तो उसकी पहली सीढ़ी आलोचना है। आज शारदा जी ने पढ़ा है स्वामी जी महाराज का लिखा हुआ, सोचे सदाचार क्या है। बिन सदाचार के आपकी भक्ति कभी फलवती नहीं हो सकेगी, कभी सफल नहीं हो सकेगी। अतएव शास्त्र के अनुसार सत्य तो ये बनता है, हमारे जीवन में पहले सदाचार आए उसके बाद हम भक्ति में प्रवेश करें, लेकिन भक्ति माँ है। अतएव अनाचारी को भी अपने हृदय में स्थान दिए बिना रह नहीं सकती। सदाचारी है, अनाचारी है, दुराचारी है, सबके सब भक्ति के अधिकारी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दुराचार करते हुए आपको भक्ति शांति देगी या परमानंद देगी, भूल जाइएगा। जन्म जन्मांतर लगे रहोगे, भक्ति प्यारी तो है, मीठी तो है, लेकिन कच्ची नहीं है। जैसे परमात्मा पक्का अपने असूलों का, ऐसे ही मां भक्ति भी अपने असूलों की बड़ी पक्की है, तस्मस नहीं होती। आप मेरे पास आओ, मैं आपको साफ सुथरा बनाने के लिए तैयार हूं, आपको परमात्मा की गोद में बिठाने के योग्य बना दूंगी। लेकिन गंदे मंदे को मैं अपने पति परमेश्वर को सौंप नहीं सकती। आपको सदाचारी बनने के लिए, आपको पवित्र बनने के लिए सहयोग देना ही होगा। पुरुषार्थ आपका, कृपा परमात्मा की, कृपा मेरी। आज एक गणेश नामक व्यक्ति है, किसी सेठ के पास मामूली सा नौकर है। मामूली सा नौकर कैसा? सेठ की दुकानें बंद करने वाला, कोई चिट्ठी इधर से उधर पहुंचानी है, ऐसे नौकर। कोई बड़े नौकर नहीं, सेठों के पास तो मुनीम भी होते हैं, बड़े बड़े नौकर भी होते हैं, पर ये ऐसा नौकर है, इतना छोटा है, तनख्वाह भी बहुत थोड़ी है। घर में पत्नी है, उसे टीबी का रोग हुआ हुआ है, पुत्री भी है पर वह भी स्वस्थ तो नहीं रहती। साधक चलो बहुत समय हो जाएगा, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल इस चर्चा को रविवार के दिन भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।